एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में तेज तरार मुक्के, यादगार बातें और एक क्या कहते हैं बेबाक अंदाज आ जाता है, मोहम्मद अली।
हाँ बिल्कुल, मोहम्मद अली।
लेकिन उनकी कहानी सिर्फ रिंग के अंदर की जीत हार तक ही सीमित नहीं थी ना?
बिल्कुल नहीं, उनकी जिंदगी तो जैसे खेल, समाज, राजनीति और संस्कृति का एक चौराहा थी, बहुत दिलचस्प।
हाँ,
और आज हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे जोनाथन आइक की 2017 में आई किताब अली ए लाइफ के जरिए।
अच्छा, अली डॉट ए लाइफ।
हाँ, ये किताब अली की मृत्यु के ठीक बाद आई थी और इसे मतलब शायद अब तक की सबसे मुकम्मल जीवनी माना जाता है उनकी।
हाँ, मैंने सुना है आइक ने इसमें काफी गहराई से शोध किया है। कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो पहले सामने नहीं आई थीं।
अरे बहुत कुछ। आइग ने FBI की वो फाइलें खंगाली जो पहले क्लासिफाइड थीं, सोचिए। और ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया जो कभी सुनी नहीं गई, अली के सबसे करीबी दोस्तों, परिवार वालों, यहाँ तक कि उनके जो विरोधी थे रिंग में, उनसे भी बात की।
अच्छा,
तो नतीजा एक ऐसी तस्वीर है जो सिर्फ हीरो वर्शिप नहीं है, समझ रहे, बल्कि अली के विरोधाभासों को, उनकी कमजोरियों को भी सामने रखती है, एक पूरा इंसान दिखाती है।
और एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि आइग ने डेटा साइंटिस्ट के साथ मिलकर अली के फाइट फुटेज का विश्लेषण किया, ये पता लगाने के लिए कि उन्होंने अपने करियर में कितने पंच झेले होंगे। ये तो गजब है।
हाँ, और वो आंकड़ा चौंकाने वाला है, करीब 2 लाख पंच।
2 लाख, बाप रे।
हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कीमत की तरफ इशारा करता है जो उन्होंने अपनी महानता के लिए चुकाई। ये किताब मिथकों से परे जाकर एक असली, जीते जागते, मतलब काफी जटिल इंसान को दिखाती है। वो इंसान जिसने खुद को महानतम कहा, द ग्रेटेस्ट, लेकिन जो शक, डर, गलतियों और हाँ, निजी तकलीफों से भी गुजरा।
तो चलिए इस असाधारण जिंदगी के सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं कैशियस मार्सेलस क्ले जूनियर। जन्म 17 जनवरी 1942 लुईविल, केंटकी में। और ये वो दौर था जिसे अमेरिका में जिम क्रो सेग्रीगेशन का दौर कहते हैं।
बिल्कुल, यानी वो समय जब कानूनन नस्ल के आधार पर अश्वेत लोगों को अलग थलग रखा जाता था, उन्हें कमतर समझा जाता था, बहुत मुश्किल दौर था।
हाँ, उनका परिवार कैसा था, मतलब किस तरह के माहौल में वो पले बढ़े?
उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय अश्वेत परिवार था। पिता कैशियस क्ले सीनियर साइन पेंटर थे, थोड़े कह सकते हैं दिखावटी, कला की तरफ झुकाव था उनका, और उनमें नस्लीय नाइंसाफी को लेकर एक गुस्सा भी था।
अच्छा।
और माँ ओडेसा ग्रेडी क्ले, वो घरों में काम करती थीं, शांत स्वभाव की थीं, और उनके मेथडिस्ट आस्था का असर बेटे पर भी पड़ा।
यानी माहौल में ही वो तनाव और संघर्ष मौजूद था, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ शांति। युवा कैशियस क्ले पर इन सब का क्या असर पड़ा?
आइक दिखाते हैं कि उन्होंने पिता का थोड़ा वो दिखावटीपन और माँ की नैतिक समझ दोनों को जैसे अपना लिया। वो बचपन से ही बहुत एनर्जेटिक थे, बातूनी, आत्मविश्वास से भरे हुए। शायद वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में नस्ली भेदभाव झेलते थे, उसी की फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने आत्मविश्वास और जोरदार बातों में बदल दिया। एक तरीका था शायद।
और फिर 12 साल की उम्र में वो मशहूर किस्सा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी साइकिल चोरी हो गई। ये कहानी तो बहुत सुनी है।
हाँ हाँ, वो गुस्से में एक पुलिस वाले के पास गए जो इत्तेफाक से एक बॉक्सिंग ट्रेनर भी थे, जो मार्टिन।
अच्छा।
क्ले ने कहा कि वो चोर को पीटना चाहते हैं, तो मार्टिन ने कहा ठीक है, पर पहले लड़ना तो सीख लो। और बस वहीं से बॉक्सिंग की शुरुआत हुई, गुस्से को एक दिशा मिल गई कह सकते हैं।
जो मार्टिन ने सिर्फ तकनीक सिखाई या कुछ और भी?
मार्टिन ने मेहनत और लगन की अहमियत बताई, लेकिन जिम एक तरह से सुरक्षित जगह थी। बाहर निकलते ही नस्लवाद की कड़वी सच्चाई उनका इंतजार कर रही होती थी। स्कूल में वो बहुत अच्छे नहीं थे, बाद में पता चला कि उन्हें डिस्लेक्सिया था, तो एक तरह से बॉक्सिंग ही उनकी असल तालीम बन गई, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, सब कुछ।
और फिर आया 1960 का रोम ओलंपिक, सिर्फ 18 साल की उम्र में लाइट हैवीवेट गोल्ड मेडल, ये तो कमाल ही रहा होगा उनके लिए।
बिल्कुल, उन्होंने पूरी दुनिया का, खासकर प्रेस का ध्यान खींचा। वो पल उनके लिए जैसे खुद को पहचानने जैसा था, एक पहचान मिली।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वापस लुईविल आने पर भी नस्ली भेदभाव ने पीछा नहीं छोड़ा।
नहीं छोड़ा।
वो मेडल फेंकने वाली कहानी है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में सर्विस देने से मना कर दिया गया और उन्होंने गुस्से में अपना गोल्ड मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया। ये सच है?
आई गेस इस कहानी पर थोड़ा शक जाहिर करते हैं, हो सकता है ये बाद में गढ़ी गई हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये कहानी सच्ची न भी हो तो भी उस भावना को जरूर पकड़ती है जिससे क्ले गुजर रहे थे। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी अपने ही शहर में अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ये मोहभंग बहुत गहरा था उनके लिए,
और शायद यहीं से उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था।
हाँ बिल्कुल, इसी दौर में उनका परिचय हुआ नेशन ऑफ इस्लाम से।
अच्छा, NOI।
हाँ, ये एक ऐसा संगठन था जो अश्वेत गौरव, आत्मनिर्भरता पर जोर देता था और उस समय श्वेत समाज से अलगाव की बात करता था। इसका संदेश क्ले को बहुत आकर्षित कर रहा था। वो एक दोहरा जीवन जीने लगे थे, दुनिया के लिए उभरते हुए बॉक्सर कैसियस क्ले और निजी तौर पर नेशन ऑफ इस्लाम के विचारों को सीखने वाले।
प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कैसे हुई उनके?
लुईविल के कुछ अमीर श्वेत व्यापारियों के समूह ने उन्हें स्पॉन्सर किया। इससे उन्हें आर्थिक स्थिरता तो मिली, लेकिन साथ ही ये सबक भी मिला कि अपनी कहानी और अपनी छवि पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। ये बात उन्होंने जल्दी सीख ली।
और फिर आया वो मुकाबला जिसने सब कुछ बदल दिया, 25 फरवरी 1964, सोनी लिस्टन के खिलाफ। लिस्टन उस वक्त हैवीवेट चैंपियन थे, डरावने माने जाते थे, किसी ने क्ले को कोई चांस नहीं दिया था।
बिल्कुल नहीं, सब कह रहे थे ये लड़का पिटेगा, लेकिन 22 साल के क्ले ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने लिस्टन को हराया।
हराया?
हाँ, रिंग में वो चिल्लाए, आई शुक अप द वर्ल्ड, ईट योर वर्ड्स, मैंने दुनिया को हिला दिया, अपने शब्द वापस लो। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बयान था।
और अगले दिन एक और धमाका, जैसे ये काफी नहीं था।
हाँ, अगले ही दिन उन्होंने घोषणा की कि वो नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य हैं और उनका नाम अब कैशियस क्ले नहीं, मोहम्मद अली है।
मोहम्मद अली,
ये नाम उन्हें NOI के लीडर एलिजा मोहम्मद ने दिया था। अली ने कहा कि क्ले उनका गुलामी का नाम था जिसे वो छोड़ रहे हैं। ये एक भुजाल लाने वाला कदम था। इसने रातों रात उन्हें अमेरिका में एक विवादास्पद हस्ती बना दिया। उनकी पहचान अब हमेशा के लिए उनकी आस्था और उनकी राजनीति से जुड़ गई।
इस नए नाम और नए पहचान के साथ उनका सफर और जटिल हो गया होगा, जाहिर है।
बहुत ज्यादा। फिर आया 1967 का वो साल और वियतनाम युद्ध। अली को अमेरिकी सेना में भर्ती होने का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
और उनका तर्क क्या था, क्यों मना किया उन्होंने?
उन्होंने साफ कहा कि उनके धर्म के अनुसार ये युद्ध गलत है, और उनका वो मशहूर वाक्य, मेरा वियतकांग से कोई झगड़ा नहीं।
हाँ, ये तो बहुत मशहूर है।
ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस वक्त के अमेरिकी सिस्टम को सीधी चुनौती थी। एक अश्वेत आदमी कह रहा था कि वो सरकार के युद्ध में नहीं लड़ेगा।
और नतीजा बहुत गंभीर हुआ होगा इसका।
बहुत। उनसे उनका हैवीवेट टाइटल छीन लिया गया, उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन पर मुकदमा चला दिया गया। जेल जाने का खतरा था।
यानी अपने करियर के शिखर पर सब कुछ दांव पर लगा दिया उन्होंने, पैसा, शौहरत, सब कुछ।
हाँ, उन्हें 3.5 साल के लिए बॉक्सिंग से बाहर कर दिया गया।
सोचिए, एक चैंपियन एथलीट के लिए उसके प्राइम ईयर्स में खेलने से रोक दिया जाना, ये कितनी बड़ी बात थी।
लेकिन अली चुप नहीं बैठे होंगे इन सालों में।
बिल्कुल नहीं, ये निर्वासन का दौर उनके लिए एक और बदलाव का दौर बना।
उन्होंने इस वक्त का इस्तेमाल कैसे किया फिर?
वो एक फुल टाइम एक्टिविस्ट बन गए, देश भर के कॉलेज कैंपस में भाषण देने लगे, वो युद्ध विरोध और नागरिक अधिकारों की एक बुलंद आवाज बन गए, दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के लिए वो एक प्रतीक बन गए।
और फिर उनकी वापसी हुई, कानूनी लड़ाई का क्या हुआ?
1971 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को पलट दिया, बड़ी जीत थी।
अच्छा,
उनके रिंग में लौटने का रास्ता साफ हो गया, और यहाँ से शुरू हुआ अली की कहानी का दूसरा और शायद सबसे शानदार दौर।
1970 का दशक, इसे अली का दशक कहा जा सकता है ना?
बिल्कुल कहा जा सकता है। 1971 में जो फ्रेजियर के साथ सदी का मुकाबला, फाइट ऑफ द सेंचुरी।
हाँ, ये उनकी पहली प्रोफेशनल हार थी, एक जबरदस्त कांटे की टक्कर थी वो, लेकिन इस हार ने भी उन्हें कुछ सिखाया। बाद में उन्होंने फ्रेजियर से 2 बार बदला लिया।
और फिर 1974 का वो ऐतिहासिक मुकाबला रंबल इन द जंगल, जायरे में जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ। फोरमैन उस वक्त के सबसे खतरनाक बॉक्सर माने जाते थे, युवा, ताकतवर, अपराजेय लगते थे।
हाँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अली जीतेंगे। फोरमैन बहुत डरावने थे, लेकिन अली ने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी मशहूर रोपे डोप रणनीति अपनाई।
रोपे डोप, ये क्या था?
इसका मतलब था कि वो रिंग की रस्सियों पर टिक गए, फोमन के ताकतवर पंचों को अपने बाजू और शरीर पर झेलते रहे, उन्हें थकाते रहे। फोमन पंच मार मारकर थक गए।
अच्छा।
और फिर आठवें राउंड में अली ने मौका देखकर फोमन को नॉकआउट कर दिया।
वाह, ये तो कमाल की रणनीति थी, सिर्फ ताकत नहीं दिमाग की जीत।
बिल्कुल। और ये मुकाबला ज़ायरे यानी अब कांगो में हुआ था, अफ्रीका में। इससे इस जीत का सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ गया। अली अपनी अफ्रीकी जड़ों से जुड़े, वो विकासशील दुनिया के हीरो बन गए। उन्होंने फिर से हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। क्या वापसी थी।
और इसके बाद 1975 में फ्रेजर के साथ फिलीपींस में थ्रिलर इन मनीला, इसे सबसे क्रूरतम बॉक्सिंग मैचों में गिना जाता है।
हाँ, वो एक बेहद वहशियाना लड़ाई थी। दोनों मुक्केबाजों ने अपना सब कुछ झोंक दिया था उसमें। अली ने बाद में कहा भी कि उस लड़ाई में उन्हें मौत का सबसे करीबी एहसास हुआ था। बहुत खतरनाक।
लेकिन इन जीतों की, इन लड़ाइयों की कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। वो 2 लाख पंच वाली बात, वो दिमाग में घूम रही है।
हाँ बिल्कुल। आइचिंग की किताब इस बात पर जोर देती है कि उन हजारों पंचों का असर धीरे धीरे अली के शरीर पर दिखने लगा था। उनकी बातें धीमी होने लगीं, उनके हाथ हल्के कांपने लगे थे। 1980 में लैरी होम्स के हाथों उनकी हार देखना बहुत दुखद था। वो पहले वाले अली नहीं लग रहे थे, साफ दिख रहा था।
और फिर 1984 में उन्हें पार्किंसन सिंड्रोम का पता चला।
हाँ, रिटायरमेंट के कुछ साल बाद आइका का शोध इस बीमारी को सीधे तौर पर बॉक्सिंग के दौरान सिर पर लगी अनगिनत चोटों से जोड़ता है। ये उस खेल के स्याह पहलू को दिखाता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
लेकिन अली की कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई, लगता है एक तीसरा अध्याय शुरू हुआ उनकी जिंदगी का।
बिल्कुल। वो धीरे धीरे एक विवादास्पद शख्सियत से, मतलब जिससे लोग डरते थे या नफरत करते थे, उससे वो शांति और इंसानियत के एक वैश्विक दूत में बदल गए। उन्होंने दुनिया भर में मानवीय मिशनों के लिए यात्रा की, लोगों की मदद की।
मुझे 1996 का अटलांटा ओलंपिक याद आता है, जब उन्होंने कांपते हाथों से ओलंपिक मशाल जलाई थी। वो पल भुलाया नहीं जा सकता, रोंगटे खड़े हो गए थे देखकर।
वो एक बेहद शक्तिशाली पल था। वो अली की कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके लचीलेपन और उनकी मानवीय भावना का प्रतीक बन गया वो पल। दुनिया ने एक नए अली को देखा।
हाँ।
जो शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन जिसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। और फिर 2016 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है।
अगर हम अली के मूल दर्शन या उनकी सोच को समझने की कोशिश करें तो क्या बातें सामने आती हैं? क्या कोई एक चीज थी जो हमेशा उनके साथ रही उनके इस लंबे सफर में?
देखिए, उनकी सोच भी उनकी जिंदगी की तरह ही बदली और विकसित हुई, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है शुरू से आखिर तक कायम रही, वो थी आत्म परिभाषा में उनका अटूट विश्वास, सेल्फ डेफिनेशन।
सेल्फ डेफिनेशन मतलब?
मतलब खुद को परिभाषित करना। उनका वो मशहूर नारा आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महानतम हूँ, वो सिर्फ शेखी बगारना नहीं था, वो खुद को गढ़ने की, अपनी पहचान बनाने की कोशिश थी। वो दुनिया को बता रहे थे कि वो कौन है, अपनी शर्तों पर।
उनकी धार्मिक आस्था में भी बड़े बदलाव आए जैसा आपने बताया।
हाँ, तीन बड़े पड़ाव दिखते हैं साफ। बचपन की दक्षिणी बैप्टिस्ट पृष्ठभूमि, फिर नेशन ऑफ इस्लाम का दौर जिसने उन्हें अश्वेत होने पर गर्व करना सिखाया और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी, भले ही उस समय उनके विचार अलगाववादी थे। फिर NOI के लीडर एलिजा मोहम्मद की मृत्यु के बाद वो मुख्य धारा के सुन्नी इस्लाम की ओर मुड़े, जिसने उन्हें एक ज्यादा सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल नजरिया दिया।
अच्छा।
और आखिर में उनके जीवन के अंतिम सालों में सूफीवाद का असर दिखता है, जहां प्रेम, शांति और सेवा पर जोर था।
तो इन सारे बदलावों के बीच उनकी बुनियादी मान्यताएं क्या रहीं? कुछ कोर वैल्यूज?
मुझे लगता है कुछ चीजें हमेशा रहीं। सभी इंसानों की गरिमा में विश्वास, अश्वेत गौरव की अहमियत, ये उनके लिए बहुत जरूरी था। और ये कि जिनके पास आवाज है, मंच है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सच बोलें।
हाँ।
चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनका वो कहना कि मुझे वो नहीं बनना जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी जिंदगी का फलसफा था उनका।
उन्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती थी? क्या चीज उन्हें आगे बढ़ाती थी इतना सब कुछ झेलने के बाद भी?
आइगर इशारा करते हैं कि उनमें प्यार और पहचान पाने की एक गहरी इच्छा थी, शायद एक कलाकार वाला दिल था उनका। दूसरी बड़ी ताकत थी अश्वेत लोगों की आज़ादी की लड़ाई, नस्लवाद को चुनौती देना, लोगों को उम्मीद देना, ये उनका मिशन बन गया था।
और तीसरी
उनकी गहरी धार्मिक आस्था, जिसने उन्हें सेना में जाने से इनकार करने की हिम्मत दी, वो उनके लिए सबसे ऊपर थी।
उन्होंने मुश्किलों का सामना कैसे किया, चाहे वो रिंग के अंदर हो या बाहर, क्या तरीका था उनका?
अली की खासियत थी कि वो मुश्किल हालात को मौके में बदल देते थे। जैसे वो रोप ए डोप रणनीति, वो मार खाते रहे लेकिन उसे अपनी जीत का हथियार बना लिया। कमाल था वो।
हाँ, बिल्कुल।
निर्वासन के दौर को उन्होंने खुद को एक विचारक और वक्ता के तौर पर विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया। वो रुके नहीं।
सही।
और जब पार्किंसंस जैसी बीमारी आई तो उन्होंने उसे भी हिम्मत और गरिमा से झेला। अपनी कमजोरी को छुपाया नहीं, बल्कि उसे इंसानियत से जुड़ने का जरिया बना लिया।
चलिए अब उन तीन पलों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं जिन्होंने अली की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आई की किताब के हिसाब से वो कौन से मोड़ थे? पहला शायद लिस्टन पर जीत और फिर इस्लाम कबूल करना है ना, 1964।
बिल्कुल, 1964 में 22 साल की उम्र में लिस्टन को हराना तो सनसनीखेज था ही, लेकिन अगले ही दिन इस्लाम और नए नाम की घोषणा करके अली ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ रिंग के नियमों से नहीं चलेंगे। उन्होंने अपना मंच पकड़ा और अमेरिकी समाज की मान्यताओं को सीधी चुनौती दे डाली। उनकी पहचान और उनकी लड़ाई एक हो गई। वो रातों रात एक ग्लोबल मगर विवादास्पद हस्ती बन गए। सब उनके बारे में बात कर रहे थे।
और दूसरा अहम मोड़ आपने बताया, सेना में भर्ती से इनकार, 1967।
हाँ, ये उनके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अपना वर्ल्ड टाइटल, लाखों डॉलर कमाने का मौका, यहाँ तक कि अपनी आजादी, सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ अपने जमीर की आवाज सुनने के लिए। इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ एक बागी नहीं बल्कि दुनिया भर में जमीर की आवाज, मतलब वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के तौर पर स्थापित कर दिया।
सही कहा।
और वो 3.5 साल का निर्वासन, उसने उन्हें बॉक्सर से एक विचारक और ज्यादा परिपक्व इंसान बनाया।
हाँ।
वो वक्त भी जरूरी था उनके लिए।
और तीसरा मोड़, ज़ायलिए में जॉर्ज फोरमैन पर वो अविश्वसनीय जीत, 1974, रंबल इन द जंगल।
ये उनकी वापसी की कहानी का शिखर था। निर्वासन के बाद जब कई लोग मान चुके थे कि उनका करियर खत्म हो गया है, तब उन्होंने उस वक्त के सबसे खतरनाक बॉक्सर को हराया।
हाँ।
ये सिर्फ शारीरिक ताकत पर, बुद्धि और रणनीति की जीत नहीं थी। अफ्रीका की धरती पर मिली इस जीत ने उन्हें तीसरी दुनिया का हीरो बना दिया। रोपे डॉप ने उन्हें एक जीनियस साबित किया।
बिल्कुल। हम सब उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं?
पहला सबक तो शायद यही है कि अपनी कहानी खुद कहने की ताकत कितनी अहम होती है। अली ने हमेशा अपनी पहचान अपनी शर्तों पर तय की। दुनिया ने जो कहा उसे मानने से इनकार कर दिया।
अपनी आवाज उठाना।
हाँ। दूसरा, अपने विश्वास पर टिके रहने की कीमत भी होती है और उसका इनाम भी मिलता है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए बहुत कुछ खोया, ये सच है, लेकिन उसी वजह से उनकी एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी जिंदा है, जो लोगों को प्रेरणा देती है।
और शायद ये भी कि जिंदगी में बदलाव और खुद को फिर से गढ़ना हमेशा मुमकिन है, रीइन्वेंशन।
बिल्कुल। उनका सफर एक मुखर, कभी कभी गुस्सैल विद्रोही से शुरू होकर एक शांत वैश्विक मानवतावादी तक पहुंचा। ये दिखाता है कि इंसान बदल सकता है, उसका मकसद बदल सकता है, वो विकसित हो सकता है। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है।
आई थिंक उनकी शख्सियत की जटिलताओं को भी सामने लाते हैं। वो आध्यात्मिक भी थे और दुनियादारी में भी पूरी तरह शामिल थे। उदार थे लेकिन कभी कभी अपने विरोधियों के प्रति क्रूर भी हो जाते थे। दूर की सोचने वाले थे लेकिन गलतियां भी करते थे। ये विरोधाभास उन्हें ज्यादा मानवीय बनाते हैं।
राइट?
ज्यादा रिलेटेबल।
हाँ बिल्कुल, यही चीज उन्हें हमारे जैसा बनाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। उनकी लड़ाइयाँ, चाहे वो नस्लवाद के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, या फिर अपनी बीमारी के खिलाफ, और उनकी जीतें, ये सब हमें जिंदगी की बड़ी सच्चाइयों से जोड़ती हैं।
जैसे
खुद को परिभाषित करना, अपने यकीन के लिए खड़ा होना, बदलाव को अपनाना, अपनी सीमाओं का सामना करना, ये सब हम सबकी कहानी का हिस्सा है कहीं ना कहीं। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कमजोरी या भेद्यता, वल्नरेबिलिटी भी एक ताकत बन सकती है अगर उसे हिम्मत और ईमानदारी से स्वीकार किया जाए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया।
इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर 3 खास बातें निकालनी हो इस किताब से और अली की जिंदगी से, तो वो क्या होंगी, 3 टेकअवेज?
ठीक है। पहली, एक भावनात्मक बात जो दिल को छूती है, वो है अली की आवाज का सफर।
आवाज का सफर।
हाँ, उनकी आवाज जो कभी उनका सबसे तेज हथियार थी, जो दुनिया को चुनौती देती थी, वो धीरे धीरे पार्किंसंस की वजह से खामोशी की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात कहने के, अपनी आत्मा को जाहिर करने के नए शांत तरीके ढूंढ लिए, अपनी आंखों से, अपनी मौजूदगी से। ये इंसान के अंदर की जबरदस्त हिम्मत और लचीलेपन की कहानी है।
बहुत खूब कहा। दूसरा?
दूसरी एक बौद्धिक या सोचने वाली बात, महानता की शारीरिक कीमत। आइक का वो 2 लाख पंचों का आंकड़ा और उसका पार्किंसन से सीधा संबंध, ये हमें खेल के ग्लैमर के पीछे की हकीकत दिखाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे हीरो मानते हैं वो उसकी क्या कीमत चुकाते हैं। ये बॉक्सिंग जैसे खेल के रोमांस पर एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सही है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है। और तीसरा एक सार्वभौमिक सबक जो सबके काम आ सकता है।
तीसरा है जिंदगी भर सीखते रहने, बदलते रहने और अपनी करुणा, अपनी हमदर्दी का दायरा बढ़ाते रहने की संभावना। अली ने अपनी जिंदगी एक ऐसे नजरिए से शुरू की जो काफी हद तक अलगाववादी था, नेशन ऑफ इस्लाम के दौर में।
हाँ।
लेकिन वो धीरे धीरे एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां वो पूरी इंसानियत को गले लगा रहे थे, चाहे वो किसी भी धर्म या नस्ल का हो। ये दिखाता है कि हम सब अपनी समझ, अपनी सहानुभूति को वक्त के साथ बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बड़े हो सकते हैं, ज्यादा समावेशी बन सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अख्तर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।